ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जं जस्सजम्मि देशे येन विहानेन जम्मि कालं मे नादं जिणेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तः जिणेन्दो वा एवं जोणिश्चयदो जानदि दौवाणि सर्वपर्याये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो कुदिट्ठि।
जिनागम के आधार से हम कारण और कार्य का क्या संबंध है, उसका क्या मर्म है, उसका क्या रहस्य है, ये बात अभी जानने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, उनको जानने की क्या आवश्यकता है, उनके सिद्धि कैसे की जाती है और उस संबंध में जो कोई भ्रांत कल्पनाएं चल रही है उसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, इन बातों को देखा था। अब यहाँ जो कार्य और कारण की चर्चा चलने वाली है तो पहले ये कार्य क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। तो कार्य किसे कहते हैं? हाँ बोलो। हाँ आप ही, आप पीछे देख कर ना, आपके पीछे। कार्य किसे कहना? हाँ, जो परिणमन हुआ, ये परिणमन कहाँ होता है? हाँ पर्याय में होता है। हाँ, द्रव्य में जो पर्याय होती है वही कार्य है। यदि हम उसका भेद करके कहना है तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, वो एक साथ विद्यमान है। कब से कब तक होते हैं? अनादि से अनंत काल तक, क्योंकि गुणों के समूह को ही हम द्रव्य कहते हैं। तो वो प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में अपनी अपनी विशिष्ट यानी विशेष अवस्था रहती है और वो एक समय मात्र टिकती है और एक समय के पश्चात दूसरी अवस्था होती है। प्रत्येक समय में एक एक अवस्था चलती है। मान लेते हैं ये नौवां समय, दसवां समय, ग्यारहवां समय, तो नौवें समय में हम नौवीं अवस्था है, तो दसवें समय में क्या होता है? दसवें समय के पर्याय का उत्पाद हुआ और ये नौवां का व्यय कब हुआ? हाँ उसी समय। दसवें का उत्पाद वही नौवें का व्यय है। ऐसा नहीं हो कि नौवे का व्यय हो जाए, एक समय रुके फिर दसवे का उत्पाद हो जाए, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, उत्पन्न रूप होती है, तो उसी समय पूर्व पर्याय नहीं रहती, उसका नहीं रहना ही उसका व्यय है। तो नौ नंबर की पर्याय नौ नंबर पर है, दस नंबर पर क्या होता है? दस नंबर की पर्याय का उत्पाद उसी समय पूर्व पर्याय का यानी नौ नंबर के पर्याय का व्यय। हाँ उसी समय नहीं हुआ है, नौवे समय में नौवे समय की पर्याय थी, अब दसवें समय में दसवें नंबर की पर्याय आई है और वहां नौवे नंबर की पर्याय नहीं रही है, वो उसका नहीं रहना ही उसका व्यय है। ख्याल में? ऐसा नहीं कि नौवे ही समय में उसका उत्पाद भी हुआ और उसका व्यय भी हुआ। एक समय में उत्पाद व्यय है परंतु वो एक ही पर्याय का नहीं है, पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय ने जिसको हम कहेंगे अनंतर पर्याय उसका उत्पाद होता है। तो ये जो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व जो हमने सीखा है, द्रव्य का लक्षण क्या है, तो सत् द्रव्य लक्षणम किसने कहा है? तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कह दिया है कि सत् द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है तो सत है। और ये सत कैसा है बोलो? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। ये जो सत यानी सत्ता स्वरूप है, कौन है सत्ता स्वरूप? कौन सा द्रव्य? प्रत्येक द्रव्य सत स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है। और उसकी सत्ता कैसी है? तो उत्पाद व्यय और ध्रुवता युक्त है। हर समय नए पर्याय का उत्पाद, उसी समय में पूर्व पर्याय का व्यय और द्रव्य कायम रहना, गुण कायम रहना, इसको क्या कहेंगे? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो ये जो उत्पाद होता है वही उस द्रव्य का कहो या उस गुण का कहो कार्य कहेंगे हम। एक तो व्यय रूप भी कार्य हो रहा है वहां पर, और ये हम उत्पाद को यहाँ कार्य रूप यानी पर्याय रूप से हम यहाँ, क्योंकि वर्तमान जो पर्याय है, जो द्रव्य की वर्तमान अवस्था विद्यमान है, उसको हम कार्य कहेंगे। और उस कार्य का कर्ता कौन है, उसका कारण कौन है, वो कैसी होती है, वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, इसकी बात चलेगी। तो हम गुण को कारण कहेंगे तो पर्याय को यहाँ कार्य कहेंगे, गुण को सामान्य कहेंगे तो पर्याय को क्या कहेंगे? विशेष। सामान्य में से ही विशेष की उत्पत्ति होती है, सुना है ना? जहां सामान्य है वहीं पर विशेष है। सामान्य का इतना बड़ा क्षेत्र होगा गुण का, तो पर्याय का क्षेत्र कितना होगा? मेरा प्रश्न है, केवल ज्ञान कितना बड़ा है बोलो? केवल ज्ञान कितना बड़ा है? हाँ, लोकालोक प्रमाण है ना, बात सही है? केवल ज्ञान कितना बड़ा है बेटा? लोकालोक प्रमाण। और ज्ञान गुण कितना बड़ा है? ज्ञान गुण कितना बड़ा है? हाँ, आत्म प्रमाण। और केवल ज्ञान लोकालोक प्रमाण नहीं, तो ज्ञान गेय प्रमाण, बराबर है ना? ये हमारा गेय हुआ, तो हमारा ज्ञान अभी इतना हुआ, फिर हमने हॉल को जाना तो हमारा ज्ञान हॉल के बराबर हुआ, बात सही है कि नहीं सही? हम पूछ रहे हैं आत्मा कितने प्रदेशी है, उसका ज्ञान गुण कितना प्रदेशी है, तो उसका मति ज्ञान कहो या केवल ज्ञान कितने प्रदेशी होगा? ख्याल में आती बात? ये नहीं ख्याल में आई? अब ज्ञान कितना जानता है पूछो तो आप कहो लोकालोक को जानता है। वहां जो गेय प्रमाण कहा है वहां कोई क्षेत्र की अपेक्षा नहीं है, तो हम ऐसी भूल नहीं करें कुछ। जितना बड़ा द्रव्य उतना ही बड़ा उसका प्रत्येक गुण। इतना बड़ा एक द्रव्य होगा तो ज्ञान गुण एक कोने में होगा, फिर दर्शन गुण यहां पर होगा, सुख गुण, हम कहते ना सुख कहाँ है? इधर है, हृदय में। और ज्ञान कहाँ है? ब्रेन में है, बराबर है कि नहीं? तो क्या है, जितना एक जीव द्रव्य है उतना उसका ज्ञान गुण भी उतना बड़ा है, उसका सुख गुण भी उतना ही बड़ा है, उसका दर्शन गुण भी उतना ही है, उसके श्रद्धा गुण भी उतना ही है। जितना एक जीव द्रव्य का, अभी हम जीव की बात करें, जिस द्रव्य की बात कर रहे हो, जो जितना द्रव्य का क्षेत्र है, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव अत्यंत महत्व की बात है। जब तक उसका निर्णय सही नहीं होता तो आगे सारा कंफ्यूजन चल रहा है। जब हमारा ही कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तो हम औरों को क्या सिखाएंगे? ख्याल में आती है ना बात? तो जितना बड़ा द्रव्य है, कोई भी द्रव्य जितना बड़ा है, उसका प्रत्येक गुण का क्षेत्र उतना बड़ा है। तभी तो हम कहते ना एक गुण और दूसरे गुण का क्या संबंध है, तो हम कहेंगे अविनाभावी, जहां एक है वहां दूसरा होगा ही होगा। हरेक का क्षेत्र कितना है? द्रव्य जितना है। तो हरेक गुण का क्षेत्र कितना है? द्रव्य जितना। और हरेक गुण की हरेक पर्याय का क्षेत्र कितना बड़ा है? क्षेत्र की अपेक्षा हम पूछेंगे आपको, मति ज्ञान बढ़ा के केवल ज्ञान बढ़ा, बोलो आप। हाँ, व्हाइट शर्ट बोलो, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आपके पीछे। केवल ज्ञान बढ़ा, हमने अभी क्या निर्णय किया? देखो देखो देखो, बिल्कुल सोचना और कोई टेंशन मत लेना। अभी हमने क्या देखा है, ज्ञान गुण कितना बड़ा है, ज्ञान हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव निश्चित करना है। अभी ये तो सिद्धांत प्रवेशिका का विषय है, और आप दोनों इसके दो टुकड़े कर दिए, एक बार उधर एक इधर, यदि एक साथ रखते ना दादा, तो जो विषय एक क्लास में कवर होता है फिर दोबारा रिपीट दूसरे में करने की जरूरत नहीं पड़े और सबको लाभ हो जाता। तो ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है उसको निश्चित करेंगे हम, गुणों के आधार से अगर हम कहेंगे तो जो ज्ञान गुण का द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसका क्षेत्र कितना है बोलो, असंख्यात प्रदेशी। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। उसका काल कितना है, गुण का काल मैं पूछ रही हूं, अनादि अनंत। और उसका भाव, जो उसका भाव है, जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसकी व्याख्या परिभाषा करेंगे हम, उसको हम कहेंगे उसका भाव है ना, ज्ञान गुण जो जानना देखना जानने का कार्य करता है। अब हमको पर्याय पर लगाओ, मति ज्ञान का द्रव्य कौन सा है, मति ज्ञान का क्षेत्र बताओ आप, फटाफट बताना पीछे। हाँ हाँ, असंख्यात प्रदेशी। क्यों? अभी हमने देखा जो जितना क्षेत्र द्रव्य का है वही क्षेत्र, उतना भी नहीं कहेंगे, वही क्षेत्र गुण का है और वही क्षेत्र पर्याय का है। तो मति ज्ञान का क्षेत्र कितना है, असंख्यात प्रदेशी। मति ज्ञान का काल कितना है बोलो, मति ज्ञान का काल कितना है, मति ज्ञान क्या है, गुण है कि पर्याय है, पर्याय, पर्याय का काल कितना होता है, एक समय। और केवल ज्ञान का काल अनादि अनंत, और मति ज्ञान एक समय, क्या ऐसा है, मति ज्ञान का काल एक समय और मति ज्ञान का भाव, जो मति ज्ञान की परिभाषा हम बनाएंगे, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जान रहे उसको मति ज्ञान कहेंगे। अब केवल ज्ञान पर घटाओ, कौन घटाएगा, चारों बताने हैं आपको, केवल ज्ञान का द्रव्य, केवल ज्ञान का क्षेत्र, केवल ज्ञान का काल और केवल ज्ञान का भाव, पीछे। हाँ बोलो बेटा, हाँ आपके पीछे, हाँ खड़े हो जाओ, उठो, बिल्कुल लगाओ ना, गलती हो जाएगी तो निकल हो निकल जाएगी। आप विद्यार्थी हो ना, विद्यार्थी है कि नहीं है, क्या बाहर से आए, हाँ बोलो, उठ जाओ, कौन लगाना चाहता है, हाँ आप लगाना, केवल ज्ञान पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाना है आपको। हाँ हाँ बहुत अच्छा। देखो जो हम केवल ज्ञान को लोकालोक प्रमाण कहते हैं वहां अपेक्षा अलग है, वो कितना जानता है उसकी अपेक्षा है। केवल ज्ञान कोई लोकालोक प्रमाण नहीं है, वो भाव की अपेक्षा उसको बनाओ लोकालोक प्रमाण। ख्याल में आती है ना बात, कितना जानता है वो बात अलग है और उसका क्षेत्र कितना है वो अलग बात है। कितने क्षेत्र को जानता है आप पूछेंगे, हमने नहीं पूछा आपको, हमने क्या पूछा है, क्षेत्र पूछा है। किसी भी पर्याय का क्षेत्र उसके द्रव्य के बाहर नहीं जाता। ज्ञान अगर द्रव्य के बाहर जाए तो क्या होगा, आत्मा से ज्ञान लंबा हो गया, ये आता है ना प्रवचन सार में, ज्ञान आत्मा से छोटा है कि बड़ा है। अरे जो आत्मा का क्षेत्र है उसके प्रत्येक संपूर्ण भागों में गुण किसको कहते हैं, गुण की परिभाषा बताओ। हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसके संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसको गुण कहते हैं। बैठ जाओ, इसी परिभाषा में आपको पर्याय की परिभाषा फिट करना है, कौन कहेगी, गुण की परिभाषा में पर्याय की परिभाषा फिट करनी है आपको, कौन कहेगा, हाँ बोलो बोलो। हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाई जाती है पर्याय, और संपूर्ण अवस्था में रहती है कि उसकी एक ही अवस्था में है, पर्याय इट्सेल्फ एक अवस्था है ना, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहती है परंतु एक समय के लिए रहती, वो पर्याय है। पर्याय एक अवस्था है और गुण उन सभी अवस्थाओं में रहता है, उसको हम गुण कहेंगे। यानी गुण में से ही वो सारी अवस्थाएं उत्पन्न होती है, इसलिए गुण की परिभाषा तो वो तो गुण तो कायम रहने ही वाला है, अनादि अनंत। तो गुण तो हम कहेंगे सभी अवस्थाओं में रहता है, और पर्याय तो एक अवस्था है, द्रव्य की एक समय की अवस्था को हम पर्याय कहेंगे। तभी फिर से दोबारा कोई अन्य केवल ज्ञान पर चार बातें लगाना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हाँ, केवल ज्ञान का द्रव्य है जीव द्रव्य, क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी, काल एक समय, भाव जो केवल ज्ञान का भाव है, नहीं केवल ज्ञान जो पर्याय जो है उसका भाव है, उसकी परिभाषा आप बता देना। बहुत सही, ये बात ख्याल में आई है। देखो ये मेरा विषय नहीं है, पर क्या करूं, यदि हम पर्याय के बारे में नहीं जानते हैं, पर्याय के बारे में हमारे अज्ञान चल रहा है, कोई संशय चल रहा है, विपरीतपना चल रहा है, तो हम आगे की कोई बातें, जिसको कहेंगे ना आगे के जो महान सिद्धांत है, वो हमारे कोई ख्याल में आने वाले नहीं। ये जो सारे अभी आपने सुना, व्याप्य व्यापक संबंध और कर्ता कर्म संबंध और ये इसका है और नहीं है, वो ये सारी बातें हम सुनेंगे और पोपटियों के भी ना तोता रटन हो जाएगा। इसको समझकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे अपने कल्याण की बात होगी। तो अभी हमने जो देखे ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य पर भी घटाना है, गुण पर भी घटाना है, प्रत्येक समय की पर्याय पर भी घटाना है। अब मैं और एक प्रश्न पूछूंगी, हमें पुद्गल परमाणु पर घटाना है और वर्ण गुण की सफेद पर्याय पर घटाना है। वर्ण गुण की सफेद पर्याय, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझे घटित करके बताना। कौन बताना चाहते हैं? हाँ बताओ, अभी आपका तो नंबर हुआ, आपने बता दिया। हाँ बताओ आप ही। हाँ क्या पूछा मैंने? वर्ण गुण की सफेद पर्याय है, उस पर आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटाना है। पुद्गल द्रव्य है, उसका क्षेत्र कितना है वो हमें नहीं मालूम है। पुद्गल का क्षेत्र हमने आपसे पूछा है। हाँ मैंने क्या कहा था? पुद्गल परमाणु पर घटित कराओ। परमाणु पर घटित करना है ना आपको? एक प्रदेश, और फिर उसका काल एक समय, और भाव, भाव उसका जो अभी हम समझ जाएंगे। बैठ जाए, देखिए ये तो ऐसे करके हमको हर एक पर घटाना है तो हमारी बात बराबर ख्याल में आ जाएगी। क्योंकि ये जो कार्य जो है ना, वो गुणों का विशेष कार्य है, जो परिणमन है, वो गुण में जो कोई विशेषताएं हैं वही पर्याय में आने वाली। जैसे ज्ञान गुण का जो कार्य है, क्या कार्य है? जानना जानना जानना। तो जानने में ये ज्ञान गुण की विशेषता आ रही है कि वो श्रद्धा गुण की मान्य रूप विशेषता आ रही है? पर्याय कैसी होती है? गुण जैसी होगी कि ज्ञान का कार्य तो जानना, और वो तो पुद्गल के वर्ण गुण जैसे सफेद हो जाएगी। जानने की पर्याय सफेद है कि लाल है? हाँ? अरे वो तो पुद्गल के पर्यायों का वर्ण गुण की बात होगी ना। वर्ण गुण की पर्याय है ये लाल है या सफेद है, हम तो यहाँ ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं। तो जो जिस गुण की पर्याय है, उसमें जो उसके कोई धर्म है, गुणधर्म है, जो कोई उसके वहां जो बातें चलेगी वो कैसी होगी? गुण जैसी होगी, कुछ अलग होगी? वो जो विशेष है वो सामान्य जैसे होगा ना। देखो सामान्य हम गुण को कहते हैं, तो विशेष हम यहाँ पर्याय को कह रहे हैं। तो जहां विशेष है वहीं पर सामान्य है, ऐसा नहीं कि यहां पर विशेष है और वहां पर सामान्य है। अभी हमने क्या देखा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित किया है। मति ज्ञान की बात करते हैं, तो मति ज्ञान का क्षेत्र कहाँ देखा, कितना देखा? असंख्यात प्रदेशी। तो जीव जो असंख्यात प्रदेशी मान लेते, इतना एक बड़ा जीव है, असंख्यात प्रदेशी है, तो उसका मति ज्ञान की उसकी पर्याय कहाँ होगी? इतनी बड़ी होगी ना, कहाँ पर है? उसी द्रव्य के संपूर्ण भाग में है। और उसका ज्ञान गुण कहाँ है? यही संपूर्ण भागों में ये ज्ञान गुण ही मति ज्ञान रूप परिणमित हुआ है। तो जहाँ सामान्य है, कौन सामान्य है? ज्ञान गुण सामान्य है, वहीं पर उसकी मति ज्ञान रूप विशेष पर्याय हो गई है। जब केवल ज्ञान होगा तो क्या होगा? इसके बाहर पूरे लोकालोक में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? कहाँ रहेगा केवल ज्ञान? उसी क्षेत्र में। अपना क्षेत्र छोड़कर ज्ञान, ना ज्ञान गुण बाहर जाता है, ना ज्ञान की पर्याय बाहर जाती है। गुरु का ज्ञान अपने में आके कुछ उथल पुथल करके भी वापस चला जाता होगा कि नहीं हो जाता? हा? गुरु का ज्ञान गुण गुरु से छूटकर शिष्य में प्रवेश कर गया कि नहीं कर गया? तो गुरु की जो ज्ञान गुण की पर्याय गुरु में चल रही है, शिष्य की ज्ञान गुण की पर्याय शिष्य में चल रही है। वो शिष्य के ज्ञान गुण में हो रही है, वो उस ज्ञान गुण का विशेष है, उस ज्ञान गुण का कार्य है। और कार्य में अभी वो तो हम निमित्त उपादान में आएंगे तब और चर्चा करेंगे। तो ये जो ज्ञान गुण की पर्याय है वो ज्ञान गुण में हुआ है, वहाँ उसी का क्षेत्र है, वही उसकी पर्याय हो रही है, वही उसका कारण है। वो कारण तो हम बाद में सिद्ध करेंगे। अभी तो हमें पर्याय कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है इसका निर्णय करना। क्षेत्र तो हमने देखा है, जो द्रव्य का क्षेत्र है वही पर्याय का क्षेत्र है, परंतु उसका समय है एक समय। गुण का समय तो अनादि अनंत है और पर्याय, प्रत्येक पर्याय का समय एक एक समय, उसका काल है, उसका काल है एक समय का। अब यहाँ जो बात हम देखने जा रहे हैं, पहले हम अभावों की चर्चा करेंगे। ये अभाव क्यों देखना जरूरी है? हमें वस्तु की अस्थि और नास्ति सिद्ध करनी है। वस्तु की भी देखेंगे, पर्याय की भी देखेंगे। अस्थि क्या होती है? उसकी सत्ता, हयाति, मौजूद की। और नास्ति वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, उसको हमको देखना है। यहाँ हम पर्याय की यानी कार्य की बात कर रहे हैं, तो कार्य कहाँ हो रहा है? कोई भी कार्य कहाँ होता है? तो वस्तु में होता है और वह उसकी वर्तमान अवस्था है। तो पर्याय को हमें देखना है तो कहाँ, कौन से काल में ढूंढना पड़ेगा उसको? पर्याय कब होती है? भूतकाल में होती है कि भविष्य काल में होती है? अभी वर्तमान विद्यमान कब होती है? हम भूत भविष्य पर्याय की बातें तो करेंगे, परंतु वो विद्यमान द्रव्य में कब विद्यमान है, पर्याय रूप से कब विद्यमान है? वर्तमान में विद्यमान है। तो हमें वर्तमान पर्याय की बात करना है। तो ये जो अस्थि और नास्ति, अभाव और सद्भाव, हमें वर्तमान पर्याय का कहाँ है और कहाँ नहीं है ये देखना है। परिभाषा में बहुत उलट पुलट चलती है, कोई लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, उसको हम देखेंगे। एक एक जो अभाव है उसकी परिभाषा देखकर हम आगे बढ़ेंगे और उसमें ये विषय फिर उठाएंगे। हमें पर्याय कहाँ है और कहाँ नहीं है देखना है। तो ये कहाँ नहीं है को हमने नाम दिया अभाव। तो वर्तमान की पर्याय कब है? तो वर्तमान में है। कब नहीं है? भूतकाल में नहीं है। वर्तमान की पर्याय जो है वो वर्तमान में है, उसकी विद्यमानता है, उसकी अस्थि है। उसकी नास्ति कहाँ कहाँ? फिर भूत में भी उसकी नास्ति है और भविष्य में भी उसकी नास्ति है। बात सही है ना? अभी इसी को हम ये शास्त्रीय भाषा में पढ़ेंगे। तो यहाँ चार अभावों की चर्चा चलेगी। उसमें से हम, मैं नाम लूंगी, आपको दोहराना है। कितने ही लोग यहाँ नए भी बैठे हैं, आप विद्यार्थी होंगे तो कितनों का ये विषय हुआ होगा। चार अभाव तो ऐसी ऐसी मामूली चीज लगती है ना, फिर भी हम सब एक साथ पढ़ेंगे इसको। तो देखो, पहला नाम है प्राग भाव। आप रिपीट करेंगे, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। ये जो पेज नंबर 33 है ना, 33 नंबर, वहां इसके नाम लिखे हैं नीचे। देखो, अभाव यानी क्या? नहीं होना, उसकी नास्ति। तो प्राक प्लस अभाव। प्राक का अर्थ क्या होता है? पूर्व की, पहले वाली। प्राची शब्द है ना, प्राक शब्द कैसे तैयार हुआ? पूर्व, पूर्व ने पहले वाली। प्राक अभाव, ये हम वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है, इसमें द्रव्य के वर्तमान पर्याय की बात चलेगी। उसका कहाँ अभाव है वो बताएंगे। कौन से द्रव्यों की बात चलेगी यहाँ पर? हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, पूर्व की पर्याय कौन से द्रव्य के बारे में बात चलेगी? सभी द्रव्यों की। ये जो बातें यहाँ अभी प्राग भाव और प्रध्वंस भाव हम सीखेंगे, ये छह द्रव्यों पर लागू होते हैं, सभी द्रव्यों में लागू हो। तो हम प्राग भाव क्या होता है उसको देखते हैं, उसकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। देखो 34 पृष्ठ पर जहाँ प्राग भाव लिखा है बोल्ड लेटर में, प्राग अर्थात पूर्व, किसी भी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का। देखो ये जो का कहाँ लगाया और में कहाँ लगाया बहुत गौर से देखना। किसी भी द्रव्य की, इसकी परिभाषा भी याद करना है हमारे लिए, अपने लिए। किसी भी द्रव्य की, यानी सभी द्रव्यों के बारे में ये बात हो रही है, वर्तमान पर्याय का, उसी द्रव्य की, या अन्य द्रव्य के बारे में बात नहीं, उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में, का प्रत्यय कहाँ लगाया? वर्तमान पर्याय का, उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव है। भूतकालीन पर्याय में अभाव प्राग भाव कहलाता है। अभाव है कहा के अभाव था कहा? अभाव है की बात है, अभाव था या अभाव होगा उसकी बात यहाँ नहीं है। परिभाषा भी यथावत याद करनी चाहिए, क्योंकि उसका एक एक शब्द, एक एक उसका अक्षर महत्व का होता है। कभी कभी उसका जो उसकी गहराई पता नहीं होती तो हम कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं और उसको कैसे भी बता देते हैं। तो मुझे ये परिभाषा कौन सुनाएगा? हाँ बोलो, पीछे एकदम। हाँ दोनों जगह में लगाया आपने, वर्तमान पर्याय का, किसी भी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, उसी द्रव्य के पूर्व पर्याय में जो अभाव है उसको क्या कहेंगे? प्राग भाव। ये बात ख्याल में आई? जैसे हम स्थूल उदाहरण देखेंगे, आज कौन वार है? बुधवार, बराबर है ना? हम यहाँ आते तो वार बार सब भूल जाते, तो हमें वो बुधवार का अभाव कहाँ है हमें प्राग भाव बताना है। तो कैसे बताएंगे आप? हाँ आज बुधवार है, उसका जो मंगलवार में अभाव है, अभाव था नहीं कहा मैंने, अभाव है, उसको क्या कहेंगे? प्राग भाव। ये प्राग भाव हुआ। हमें दूसरे भी उदाहरण ढूंढने हैं, आप बताएंगे कोई उदाहरण? आपको अपने मन से बताना है। हाँ बोलो। तरुण पर्याय का वर्तमान के पर्याय में, बचपन की। हाँ मुझे सुनने में नीचे बैठ जा। हाँ क्या कहा है आपने? यौवनावस्था का, किसमें? बाल्यावस्था में अभाव। अवस्था का कहा? यदि मैं आपको कहूँ आपका बचपन में अभाव था या अभाव है, तो क्या दोष होगा? हमने द्रव्य का अभाव बताया। हम यदि कहेंगे कि ये जो कोई रमेश सुरेश जो कोई है उसका बचपन में अभाव है, ऐसा कहेंगे तो वो प्राग भाव नहीं होगा, उसकी अवस्था का पूर्वावस्था में। ये अवस्था का अवस्था में अभाव है, वर्तमान अवस्था का पूर्व अवस्था में जो अभाव है उसको प्राग भाव कहते हैं। ये वर्तमान वाले द्रव्य का अभाव नहीं बताए, द्रव्य का तो कभी अभाव होगा ही नहीं। द्रव्य अभी भी है, पूर्व अवस्था में भी था, भविष्य में भी कायम रहेगा। द्रव्य तो अनादि अनंत होता है, द्रव्य का अभाव नहीं है यहाँ पर। एक ही द्रव्य का उसकी किसी भी पर्याय में अभाव नहीं है। वो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में बताएंगे वो बात अलग है, वो अत्यंत अभाव में हम याद करेंगे उसको। यहाँ क्या बात हो रही है? प्राग भाव में किसी वर्तमान अवस्था का उसी पर्याय की पूर्व अवस्था में जो अभाव है, ये अभाव भी वर्तमान में है। तो आप कहेंगे पूर्व में कहाँ थी वर्तमान अवस्था? पूर्व में नहीं थी, उसकी बात नहीं चल रही। वर्तमान पर्याय की अस्थि कब है? अभी वर्तमान समय में है, और वर्तमान समय की ही हमको नास्ति बताना है। तो वो कहाँ पर नास्ति रूप है? तो भूत की पर्याय में नास्ति रूप है, भविष्य का उसको हम अलग नाम देंगे। अभी तो हम पूर्व की बात चल रही है। तो ये क्या सिद्ध होता है इसका, कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। तो वर्तमान पर्याय कितनी बड़ी है, पूर्व पर्याय में तो उसका अभाव ही है, तो वो कितने समय के लिए है, एक समय के लिए, यानी एक समय के पूर्व में उसका अभाव है, बाद में कहेंगे एक समय के पश्चात भी उसका अभाव है, तो उसका सद्भाव कितने काल तक है, एक समय पूर्णता है। तो हमें कार्य करना है तो कहाँ देखना पड़ेगा, पूर्व की ओर देखना पड़ेगा ना, कि भविष्य की ओर देखना पड़ेगा। अरे वर्तमान कार्य वर्तमान में ही है, अन्यत्र उसका अभाव ही है, तो पूर्व पर्याय मेरी ऐसी थी इसलिए मैं ऐसा बन गया, ऐसा होता है ना। हम कहाँ देखते हैं, पूर्व पर्याय की ओर देखते हैं। अरे परंतु जो वर्तमान का कार्य है वो नया वर्तमान में उत्पन्न हुआ है, वो पूर्व पर्याय में था ही नहीं है। तो ये हम जो कहते अरे हमें क्या है, हमें किसी का कुछ मिला नहीं, हमारे संस्कार नहीं थे, ये संस्कार के कार्य हो गए, ये सब बातों का जो कोई जिसको कहीं भ्रमणाएं चलती है, वो सारी भ्रमणाओं का हमें यहाँ उत्तर मिलने वाला है। तो हम यहाँ कहते हैं देखो यह यौवनावस्था इतिहास लिखा ही था। देखो हम दही को देते हैं, देखते हैं दही ये अवस्था है, उसका द्रव्य हम गोरस कहेंगे। गोरस नाम सुना है ना, ये गोरस जो द्रव्य हम ये हम समझाने के लिए इसको द्रव्य कह रहे हैं। वैसे तो वो भी स्कंद है और ये भी स्कंद है तो वो पर्याय, परंतु हम दृष्टांत के तौर पर उसको द्रव्य मानकर यहाँ चल रहे हैं। तो हमारे पास दही है, गोरस की दही अवस्था है, तो उसको प्राग भाव हमें सिद्ध करना है। बोलो हाँ कैसा कहेंगे, आप ही को पूछ रही हूँ। हाँ क्या ये सही है, दही ये वर्तमान पर्याय है, आप बिल्कुल शांति से बात करो। हाँ दही गोरस की वर्तमान अवस्था है, उस दही अवस्था का उसका हमें बात करनी है, उसमें नहीं लगाना है, उसका किसमें अभाव है, वो घी तो उसकी भविष्यकालीन पर्याय हो जाएगी। देखो हमारी परिभाषा क्या है, किसी द्रव्य की यानी गोरस की वर्तमान पर्याय का यानी दही का, उसी द्रव्य की यानी उसी गोरस की पूर्व अवस्था में जो अभाव है, अभी उसकी पूर्व अवस्था कौन सी थी दही की, हाँ तो अभी कैसा कहेंगे हम, दही इस वर्तमान अवस्था का उसी गोरस की दूध अवस्था में जो अभाव है उसको क्या कहेंगे, प्राग भाव। बात ख्याल में आई, और कोई कहेगा कोई उदाहरण दूसरा। देखो अभी हमारे पास मेरे पास ये बंगड़ी है, परंतु ये हमने वो हार था ना पहले, तो उसको निकाल कर उसको तुड़वा कर हमने बंगड़ी बनाई, तो इसमें द्रव्य किसको लेना, बंगड़ी को कहार को, हाँ ये बंगड़ी द्रव्य है कि हार द्रव्य है, बोलो। हाँ पर्याय है, तो यहाँ द्रव्य किसको लेंगे हम, सोना। तो हमारे पास सोना नाम का द्रव्य है, उसकी वर्तमान अवस्था ये बंगड़ी है और पूर्व अवस्था हमारी कौन सी थी, हार थी। अभी उसको आपको प्राग भाव बताना है, बोलो। देखो बंगड़ी की अवस्था नहीं है और हार की अवस्था नहीं है, बंगड़ी इटसेल्फ अवस्था है। बंगड़ी जो वर्तमान अवस्था है, बंगड़ी रूप जो वर्तमान अवस्था है सोने की, वो बंगड़ी अवस्था है। तो बंगड़ी नाम की अवस्था है उसका, उस सोने की पूर्व अवस्था कौन सी, हार, उसमें अभाव है। ख्याल में आई बात। अभी महावीर भगवान अभी सिद्ध दशा में विराजमान है ना, अभी उस पर प्राग भाव लगाने हैं, यानी अभी हम देखो प्राग भाव तो एक एक समय की पूर्व पर्याय में लगता है, परंतु यहाँ हम स्थूल रूप से देख रहे हैं। जैसे सिद्ध दशा को हम पूर्व अवस्था, हम अरिहंत दशा को ले लेंगे, वैसे तो अभी वर्तमान की सिद्ध दशा तो पूर्व एक समय पहले की सिद्ध दशा में अभाव बताना चाहिए सच देखा जाए तो, परंतु यहाँ हम समझ रहे हैं ना अभी, तो हम मोटी मोटी बातों को पहले समझेंगे, बाद में एक एक समय पर घटित करेंगे। तो वर्तमान में जो सिद्ध दशा है महावीर भगवान की, तो उसको हम प्राग भाव उसमें लगाना है। हाँ बताओ अरियंत अवस्था का अब हाँ किसके आदिनाथ के महावीर के हाँ महावीर भगवान की जो सिद्ध दशा है वर्तमान पर्याय में, अभी हम मोटी रूप मोटी अवस्था ले रहे हैं, तो उन्हीं की जो पूर्व अवस्था कौन सी अरिहंत दशा, महावीर भगवान के ही अरिहंत दशा में उनका अभाव है, बात ख्याल में आती है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, परंतु वो उसी द्रव्य की चाहिए, अन्य द्रव्य की बात यहाँ नहीं है, एक ही द्रव्य में दोनों ही घटित करना, यहाँ तक बात ख्याल में आई है। अपने मन से कोई और उदाहरण दे सकते हैं आप? हाँ बोलो। आपने कहा ये 34 पेज नंबर है, वो किसकी अवस्था है? अच्छा पुस्तक की अवस्था बताई आपने, और उसके 33 में अभाव है। उसको हम अन्योन्य अभाव में याद करेंगे, हाँ अभी तो वो घटित नहीं होगा। देखो जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है प्रथम उपशम सम्यक, तो आपने करण लब्धि का नाम सुना है? करण लब्धि क्या होती है मालूम है क्या? नहीं सुना? करण लब्धि का नाम नहीं सुना? हाँ सुना है। पहले अधप प्रवृत्त करण होता है, फिर अपूर्व करण होता है, अनिवृत्ति करण होता है, उसके अंत समय तक मिथ्यात्व का उदय है, बंद भी है, और उसके अनंतर समय में इमीजिएट नेक्स्ट समय में क्या होता है? सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन की जो अवस्था है पहले समय की, उस पर घटित करना है। औपशमिक सम्यक्त्व का पहला समय ये अवस्था चल रही है, तो औपशमिक सम्यक्त्व का हमें प्राग भाव बताना है। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ कॉर्नर वाले आपके बाजू में, आपके पीछे, आपके पीछे। औपशमिक सम्यक्त्व को आप प्राग भाव में घटित करना, कौन करना चाहता है? अपने मन से करो। हाँ बोलो। हमें पूर्व का कहाँ लगाया आपने? पूर्व पर्याय को लगाया। ये का प्रत्यय कहाँ लगाना है? वर्तमान को लगाना है। देखो उसका इसमें अभाव नहीं है, वो बात नहीं चल रही है। देखो हम अगर कहते हैं 9 नंबर की पूर्व पर्याय और 10 नंबर की वर्तमान पर्याय, जैसे हम कहेंगे 10वें का 9वें में अभाव है, वैसे 9वें का भी 10वें में अभाव तो है, परंतु हमें सद्भाव अस्ति और नास्ति वर्तमान की सिद्ध करनी है, तो हम का प्रत्यय वर्तमान को लगाएंगे। वर्तमान का पूर्व पर्याय में अभाव, अभी हमारा वर्तमान क्या है? औपशमिक सम्यक, तो औपशमिक सम्यक्त्व का अभाव बताना है। तो अभी बोलो उसका। हाँ बहुत अच्छा। हाँ समझ में आई बात? केवल सही बात दूसरा कोई बताए हम बताए नहीं, समझकर आपको उसको उत्तर देना। बैठ जाओ। वर्तमान में हमने देखा यह औपशमिक सम्यक्त्व का पहला समय है, तो यह औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ ये दशा है ना, पर्याय है कि नहीं है? ये पर्याय कौन सी सम्यक्त्व की? ये प्रथम समय वाली पर्याय है। उसके एक समय पूर्व की पर्याय कौन सी थी? मिथ्यात्व दशा। तो ये वर्तमान के औपशमिक सम्यक्त्व का पूर्व पर्याय जो मिथ्यात्व दशा, उसमें जो अभाव है लगाना होगा, या था ऐसा नहीं, जो है उसको हम क्या कहेंगे? प्राग भाव। इतनी बात ख्याल में आई? यदि हम इस अभाव को नहीं मानेंगे तो सम्यक्त्व पूर्व पर्याय में भी था ऐसा मानना पड़ेगा। पहली तो मिथ्यात्व की पर्याय थी, अब वर्तमान में सम्यक्त्व पर्याय हुई है, यदि हम इस प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो पूर्व की पर्याय में भी सम्यक्त्व था, तो एक पर्याय पूर्व में था तो उसके पहले में होने में क्या बाधा है? तो और एक समय पीछे चले जाओ, उसमें भी सम्यक्त्व था मानना पड़ेगा, फिर और उसके पहले भी मानना पड़ेगा, तो कार्य कब का ठहरेगा? यदि प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि का मानना पड़ेगा, और कार्य कितने लंबा चलता है? एक समय, कार्य का एक समय है, वर्तमान एक समय पूर्ता कार्य हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन से द्रव्य में है, कौन से द्रव्य में कार्य हो रहा है। अभी तो गुरु में हो रहा है, बाकी शिष्य सो रहे हैं ना, क्यों ऐसा होता है ना। गुरु में कार्य हो रहा है पढ़ाने का, और शिष्य क्या करे, सो रहे। हर एक द्रव्य में अपना अपना कार्य चल रहा है, उसके हर एक गुण में अपना अपना कार्य चल रहा है। कब होगा, फुर्सत से होगा नहीं, प्रत्येक द्रव्य में होगा। तो प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक समय में कार्य हो रहा है, और वो प्रत्येक समय का जो कार्य है, जो वर्तमान अवस्था है, उसी को वो कहाँ हो रही है और कहाँ उसका अभाव है, उसकी चर्चा चल रही है। तो यदि हम प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो अनादि से ही कार्य है ऐसा मानना पड़ेगा, परंतु ये कार्य तो नया हुआ है, हाल में आता है ना। वो तो उसके लाभ और उसकी जो कोई नहीं मानने की हानि तो हम आगे पढ़ेंगे। केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, पहला समय, 13वां गुणस्थान जो है, उस समय 13वें गुणस्थान की प्राप्ति हुई, उसका अर्थ है क्या, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ, हाँ, ज्ञानावरण कर्म का, ये कर्म वहां उस अन्य द्रव्य है, उसका अभाव हुआ और यहां मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा ही है कि नहीं है। तो केवल ज्ञान की पूर्व अवस्था कौन सी थी, क्षोभसम ज्ञान था, मति शुद्ध ज्ञान, जो कुछ है, जिसको चार ज्ञान होगी, किसी के तीन होगी, किसी को दो होगी। तो ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये हमारा वर्तमान समय हम किसी द्रव्य का मान लेते हैं, तो उस पर हमें प्रागभाव घटित करना है। कैसे करोगे, हाँ, केवल ज्ञान पे, हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, केवल ज्ञान की वर्तमान पर्याय का, किसी द्रव्य के, किसी जीव के वर्तमान की, केवल ज्ञान की पर्याय का, उसी जीव के पूर्व जो सदमस्त अवस्था, अवस्था की बात है ना, वर्तमान अवस्था का पूर्व अवस्था में अभाव, ये बात चलेगी यहाँ पर, तो उसको हम कहेंगे प्रागभाव। ये प्रागभाव के बाद हम प्रध्वंसा भाव देखेंगे। अभी हमने क्या देखा है, ये जो वर्तमान की जो पर्याय है वो वर्तमान में है, वो पूर्व में नहीं है, यानी वो एक समय पूर्ति है। तो एक समय के बाद भी रहेगी कि नहीं रहेगी, वर्तमान जो पर्याय है एक समय के बाद भी रहेगी ना। अरे हमने इतना कार्य किया तो थोड़ा रहने दो ना उसको, तो अनंतर समय में दूसरा नया कार्य वहां होगा। तो ये वर्तमान की पर्याय वर्तमान में है और ये भविष्य में नहीं है। तो अभी हम उसको उल्टी तरह से देखना है, वर्तमान पर्याय का, अभी भी का प्रत्यय वर्तमान को ही लगाना है, वर्तमान पर्याय का भविष्यकालीन पर्याय में जो अभाव है, होगा नहीं, जो है उसको क्या कहेंगे, प्रध्वंसा। रिपीट करेंगे परिभाषा, हाँ बोलो बोलो बेटा। वर्तमान पर्याय का, यानी किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, हाँ, उसी द्रव्य के भविष्यकालीन पर्याय में जो अभाव है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस होना है, अभी उसका व्यय हो जाना, नाश हो जाना। ये पर्याय वर्तमान में ही है, भविष्य में वे नहीं रहेगी, वो नहीं रहने वाली है, उसको कहेंगे प्रध्वंसा भाव। जो जो हमने पहले उदाहरण याद किए थे, आज है बुधवार, तो हमें उस पर प्रध्वंसा भाव लगाना है। बोलो, हाँ बोलो, वर्तमान पर्याय हमने, ये तो मोटी तौर पर स्थूल दृष्टांत हुए हो, क्योंकि उसमें तो कितने समय बीत जाएंगे, फिर भी हम यहाँ समझने के लिए इसको लगा रहे हैं। वर्तमान जो आज बुधवार है, उसका जो कल आने वाला जो है, कल गुरुवार, उसमें जो अभाव है की बात है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रध्वंसा भाव। ख्याल में आई बात। दूसरा उदाहरण हमने दही का भी लगाया था, गोरस पर घटित किया था, अभी आपको बताना है, हाँ बोलो, पीछे दही पर्याय पर आपको प्रध्वंसा भाव लगाना है, कौन बताना चाहते है, हाँ बताओ, हाँ बहुत अच्छा। गोरस की जो वर्तमान की पर्याय दही हमने मान ली है, उसकी छाछ पर्याय में जो अभाव है उसको हम क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। बात सही है ना? हमने सोने का भी उदाहरण लिया था, अभी तो हमारे पास बंगड़ी है, तो उसकी हम उसको तोड़कर अभी हम कुछ नया गहना बनाएंगे, ब्रेसलेट बनाएंगे। हाँ बोलो, कैसा गठित करेंगे? आपने कहा सोने का ब्रेसलेट में अभाव, क्या ये बात सही है? तो ब्रेसलेट बिना सोने का बन जाएगा, अच्छा है ना? हाँ हाँ, फिर दोहरा, आपकी जो कुछ गलती है आपको सुधारना है। हाँ हाँ, सोने की वर्तमान पर्याय बंगड़ी है, उसका हाँ हमें ब्रेसलेट कहा, हमने भविष्यकालीन जो पर्याय ब्रेसलेट उसमें जो अभाव है, सोने का अभाव नहीं है। सोने का तो वर्तमान में भी सद्भाव है, बंगड़ी में सोने का तो भविष्य में भी सद्भाव रहेगा, वो तो सोने का तो पूर्व पर्याय में भी सद्भाव था। सोने को हम यहाँ द्रव्य कह रहे हैं, वैसा है तो स्कंद, समझाने के लिए हमने उसको द्रव्य कहा है। ख्याल में आती है? द्रव्य का यहाँ अभाव नहीं हो रहा, एक ही द्रव्य के वर्तमान अनादि से अनंत काल तक वही द्रव्य कायम है और उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं। यदि हम द्रव्य का ही अभाव कर देवेगी तो एक द्रव्य का अभाव हो सकता है, नाश हो सकता है, तो दूसरे का भी नाश हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है, तो विश्व का ही नाश हो जाएगा। ख्याल में आती है ना? बस यहाँ पर्यायों की बात चल रही है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में हम पर्यायों के अभाव की चर्चा करें, द्रव्यों के अभाव की और उसकी अन्य जो बातें आगे आएंगी, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव बताएंगे। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान में ही है, वो भविष्य काल में यह कार्य नहीं रहने वाला। तो वर्तमान में कोई रोगी है, कोई दुखी है, मिथ्यात्वी है, तो रोने से तो कार्य होगा कि नहीं होगा? तो उसको कहते हैं कोई चिंता नहीं है, ये पर्याय एक समय पूर्ति है, भविष्य काल में तो ये पर्याय नहीं रहने वाली है। तो अभी जो तूने धर्म नहीं किया है, अभी सम्यक तो नहीं प्राप्त किया है, तो इस पर्याय का भविष्यकालीन पर्याय में अभाव है, तो तू ये नए रूप से वहाँ कार्य कर सकता है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा भी है कि जो कहता है कि मैंने पूर्व में बहुत पाप किए, क्या किए, ऐसे ऐसे हमने खोटे परिणाम किए, इतने काल हमारा बिगड़ गया, हमें 40-50 साल हुए, हमने धर्म की कोई बात सुनी नहीं है, तो चिंता मत कर। क्यों? वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव है, तो अभी वर्तमान में ये कार्य कर सकता है। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भविष्यकालीन पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव? कहने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अभाव है, परंतु उसको हम प्रध्वंसा भाव नहीं नाम देंगे। क्यों? हमें चर्चा वर्तमान पर्याय की करनी है, वर्तमान पर्याय में अस्थि और वर्तमान पर्याय यानी वर्तमान पर्याय की अस्थि और वर्तमान पर्याय की नास्ति बताना है। देखो ये बात यहाँ लिखी, नहीं, मैं जो बताना चाहती हूँ ये देखो, 38 पेज नंबर का पृष्ठ। यहाँ से लेते हैं हम पूर्व पृष्ठ से, 37 पृष्ठ से। ये जो दोनों अभाव हमने अभी देखे हैं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये सभी द्रव्यों में घटित करना है, केवल जीव द्रव्य की या पुद्गल द्रव्य की बात नहीं है, 14 द्रव्य में घटित हो गए। देखो प्रत्येक द्रव्य की लास्ट पैराग्राफ, प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान समय की पर्याय सत है। किसको कहा सत? पर्याय को। कितने काल के लिए सत है? एक समय के लिए सत है, सत है, विद्यमान है, वो उसकी हयाती बताता है, विद्यमान है, उसकी सत्ता है, उसकी अस्थि है, सद्भाव है। वर्तमान एक समय छोड़कर अनादि की सभी पर्याय तथा अनंतकालीन सभी पर्यायों में इसका अभाव है, नास्ति है। क्या कहते हैं? वर्तमान पर्याय की अस्थि यानी वो सत विद्यमानता कब है? वर्तमान में है। वही पर्याय अनादि से अभी तक तो नहीं थी या उस पर्यायों में उसका अभाव ही है, उसकी नास्ती है, और अनंत काल तक की जो अन्य आने वाली पर्याय है उसमें भी उसकी नास्ती है। उसकी अस्थि कहाँ है? बस उसके वर्तमान, उसके स्व समय में उसकी अस्थि है, बाकी सब अन्य समयों में उसकी नास्ती है। इस पर्याय जैसी दूसरी पर्याय हो सकती है, क्या कहते हैं? इस पर्याय जैसी दूसरी पर्याय हो सकती है, अभी केवल ज्ञान की जो एक समय की पर्याय है वैसी की वैसी दूसरी पर्याय हो सकती है, पुद्गल की जो एक समय की पर्याय है दूसरे समय में भी वैसी की वैसी पर्याय, परंतु वह की वह नहीं रही है, क्योंकि उस एक समय के पर्याय का तो अभाव हो चुका। केवल ज्ञान की भी हर समय जो नई 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 पर्याय है, अनंत सुख की भी जो नई पर्याय है, ऐसा नहीं कि एक बार सुख भोग लिया और उसी को याद करते रहो, उसी को बासी सुख भोगते, ये ऐसा नहीं है। हर समय की पर्याय नई है, एक समय में अनंत सुख, फिर अनंत सुख, फिर अनंत सुख, फिर अनंत सुख, हर समय की एक एक समय की पर्याय जो है वो नई नई आती है, और वो अपने समय में विद्यमान है, जिसको जन्म क्षण कहा है ना, पर्याय का जन्म क्षण, उसका जो उत्पत्ति का काल है, कहाँ कहा है, किसने कहा है, हाँ, पर्यायों के जन्म क्षण की बात किसने कही है और कहाँ कही है? हाँ, प्रवचन सार में, आप प्रवचन सार में बताया है कि पर्याय का जन्म क्षण, जन्म क्षण का अर्थ क्या है? हमने देखा है कि प्रत्येक द्रव्य में अनादि से लेकर अनंत काल की सभी पर्याय अपने सुनिश्चित समय पर खचित है, तो अपने ही समय पर वो उत्पन्न होती है, उसका वो जन्म क्षण कहलाता है, ये पर्यायों का जन्म क्षण है। वो किसी ने केवली ने जान लिया इसलिए होता है, ऐसा नहीं है, हमने पुरुषार्थ किया इसलिए होता है, वो तो सब बातें भरेंगे कहेंगे आगे, पुरुषार्थ किसको कहना और वो कब होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, इस पर्याय जैसी दूसरी पर्याय हो सकती है, परंतु वही पर्याय नहीं होगी, क्योंकि जो इस वर्तमान समय में ही उत्पन्न हुई हो उसका भूतकाल में अस्तित्व कैसे होगा, और जो वर्तमान समय पश्चात रहेगी ही नहीं, जिसका व्यय होगा, वही पर्याय, वही की बात चल रही है, वैसी हो सकती है, वही पर्याय भविष्य में कैसी रहेगी। अब आपका जो प्रश्न है ना कि उल्टा क्यों नहीं लगा सकते, भूतकाल का वर्तमान में अभाव ऐसा क्यों नहीं कह सकते, भविष्यकालीन पर्याय का वर्तमान में अभाव क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एक दूसरे में परस्पर अभाव होता है, तो ये का और में लगाने में इतनी चौकसाई क्यों कर रहे हैं? बात ऐसी होती है, ऐसे प्रश्न पूछते भी है। यहाँ अस्थि और नास्ति, सद्भाव और अभाव एक वर्तमान पर्याय पर ही घटित कर रहे हैं, हमें किसकी अस्थि नास्ति कहना है? अस्थि यानी सत विद्यमानता वर्तमान की है, तो उसी पर हमें नास्ति धर्म, जो अस्थि धर्म और नास्ति धर्म हम घटित करते हैं, एक द्रव्य पर अस्थि और दूसरे द्रव्य पर नास्ति लगाते हैं कि एक ही द्रव्य में लगाते हैं, ऐसे पर्याय में भी हमें इसी वर्तमान पर्याय की ही अस्थि और नास्ति बतानी है। सद्भाव और अभाव एक वर्तमान पर्याय पर ही घटित कर रहे हैं, वर्तमान पर्याय का वर्तमान पर्याय में क्या है? सद्भाव है, अस्थि है, और इसका यानी वर्तमान पर्याय का भूत और भविष्यकालीन सभी पर्यायों में अभाव है, नास्ति है। हमने तो अभी एक पूर्व पर्याय लिया और एक उत्तर पर्याय लिया, परंतु एक समय पूर्व जिसका अभाव है उसका दो समय पूर्व भी अभाव होगा, तीन समय पूर्व भी अभाव होगा, अनादिकाल से आज तक की पूर्व पर्याय तक सभी पर्याय में उसका अभाव है, और एक वर्तमान पर्याय को वर्तमान छोड़कर भविष्यकालीन अनंत पर्याय में उसका अभाव है। तो वर्तमान के लिए हमें कहाँ देखना रहा? वर्तमान की ओर। हम क्या करते हैं, या तो भूतकाल को याद करते रहते हैं, या भविष्य की चिंताएं या प्लानिंग करते रहते हैं, बात है ना? ध्यान देना, वर्तमान पर्याय इस वर्तमान समय में है, उसकी अस्थि है, और इसी समय, देखो उसकी नास्ति पहले समय की बात नहीं है, इसी समय उसकी नास्ति है, जिस समय अस्थि बता रहे हैं उसी समय उसकी नास्ति बता रहे हैं। आपकी अस्थि है क्या नास्ति है भाई? हाँ, हमारी अस्थि भी है और नास्ति भी है, कैसे? हम अपने स्वचतुष्टय रूप से अस्थि रूप है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वरूप से हमारी अस्थि है, उसी समय हमारी परद्रव्य परक्षेत्र परकाल प्रभाव रूप से नास्ति है। एक ही समय में घटित किया ना हमने, ये अस्थि और नास्ति वर्तमान में एक समय में उसी समय में घटित करना है। तो वर्तमान पर्याय वर्तमान समय में अस्थि रूप है और वर्तमान की पर्याय पूर्व की सभी पर्यायों में नास्ति रूप है और भविष्य की सभी पर्यायों में नास्ति रूप है। यहाँ अस्थि और नास्ति एक ही पर्याय पर एक ही समय में घटित कर रहे हैं। वर्तमान पर्याय में अस्थि और नास्ति धर्म एक साथ है, युगपत है। बात कुछ ख्याल में आती है? ये प्रश्न बहुत होते कि उल्टा क्यों नहीं करना, भूतकालीन पर्याय का वर्तमान में अभाव बताओ ना, पर हमें अस्थि और नास्ति की चर्चा वर्तमान समय के लिए करनी है क्योंकि कार्य वर्तमान में होता है। भूतकालीन जो पर्याय है अभी विलीन हो गई, वो तो द्रव्य रूप से पारिणामिक भाव से हो गई, अभी उसकी चर्चा नहीं। हमारा जहाँ कार्य हो रहा है उस कार्य के संबंध में अभी हम यहाँ से आगे सभी बातें करेंगे। उसकी अस्थि कहाँ ये पहले सिद्ध कर रहे हैं, फिर उसके कारणों की चर्चा करने वाले। इसीलिए प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव की परिभाषाएं दोबारा देख लीजिए। यहाँ का देखो, लिखने में भी ये मुझे लिखना पड़ा क्योंकि तभी से बात, ये कुछ आजकल लिखी हुई पुस्तक नहीं है, 2000 में लिखी होगी शायद, या 2002 में। हाँ, ये तो हिंदी वाला 2001 का है। हाँ, तो प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव की परिभाषाएं दोबारा देख लीजिए। यहाँ का प्रत्यय, प्रत्यय समझते हैं ना, वर्तमान का, ये का को प्रत्यय कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं ना, वर्तमान पर्याय के साथ है और मैं प्रत्यय भूत तथा भविष्य की पर्याय के साथ लगाया है। वर्तमान पर्याय का भूत में और भविष्य में अभाव बताया जा रहा है, इसलिए इस परिभाषाएं इसी तरह याद करना। देखो आगे का प्रश्न है, तुम कहोगी, दो मिनट है और देखेंगे हम। भूतकालीन पर्यायों का भी वर्तमान पर्याय में अभाव है और भविष्यकालीन पर्यायों का भी वर्तमान पर्याय में अभाव है, तो हम का और मैं प्रत्यय कहीं भी जोड़े क्या फर्क पड़ने वाला है? हम आपका यही प्रश्न है ना, यही प्रश्न बच्चियों के मुंह में डाल दिया। देखो वर्तमान पर्याय में उनका अभाव है इसकी कौन ना कह रहे हैं, परंतु हमारा प्रयोजन तो वर्तमान पर्याय की अस्थि नास्ति उसका सद्भाव अभाव सिद्ध करना है। कार्य वर्तमान समय में होता है इसलिए हमें तो वर्तमान की तरफ देखना होगा। हम सदाकाल मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम या तो भूतकाल संबंधी या भविष्यकाल संबंधी संकल्प विकल्प करते रहते हैं। भूतकाल के सुखद प्रसंगों का स्मरण करके हर्ष मानते हैं या दुखद प्रसंगों का स्मरण करके दुखित होते हैं, या भविष्य संबंधी कल्पनाओं में शेख चिल्ली में दंग रह जाते हैं। इस तरह वर्तमान पर्याय इसी में बर्बाद हो जाती है। आगे की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हम फिर शाम को देखेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।